आयरियाडं नमो उवर्चायाडं नमो लोय सप्तसापूरम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोकनि मंगलम् कुंदकुंदाख्यो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रजानां सर्वधर्माणां क्षेमं च पुरुषासनं क्षेमं च पुरुषासनं क्षेमं च पुरुषासनं भुवन में सार गीतराग विज्ञानता आप लोग समवर और निर्जरा तत्व पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें आश्रव तत्व को बताया था कि वो आत्मा को दुख का कारण है, इसलिए उसको छोड़ना चाहिए। यही आत्म को दुख कारण दाते इनको तजिए। और बंध तत्व में बताया था कि बंधन से कभी सजिए मत। और फिर अब संवर और निर्जरा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आश्रव तत्व में पंडित दौलत राम जी ने स्ट्रेस किया था, ये ही आत्म को दुख कारण, मतलब आत्मा को दुख का कारण ये आश्रव के परिणाम ही है। जब ही लगा देते हैं उसका मतलब होता है इसके अलावा और कुछ नहीं, एक्सक्लूसिवली ये ही है। आश्रव के अलावा आत्मा को दुख का कारण और कुछ नहीं है। देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा हम डीप में बात करते हैं। थोड़ा सा दुख के कारण तत्व, सात तत्व में से दुख के कारण कौन कौन से तत्व है? ए आश्रय, बी आश्रय और बंध, सी अजीव, सात तत्वों में से, ठीक है, नौ पदार्थों में से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है आश्रव, ऑप्शन बी है आश्रव बंध पुण्य पाप, ऑप्शन सी आश्रव पुण्य पाप, एंड ऑप्शन डी अजीव आश्रव बंध पुण्य पाप।
बी
कौन से होंगे? बी।
बी ऑल नहीं ऑल
डी डी लास्ट वन
हाँ ऑल
ऑल ऑफ देम
हाँ। वापिस आई एल रिपीट द क्वेश्चन। सबसे पहला है आत्मा को दुख के कारण ये बनते हैं, ए ऑप्शन ए आश्रव तत्व, ऑप्शन बी आश्रव बंध पुण्य पाप तत्व, ऑप्शन सी आश्रव पुण्य पाप तत्व एंड ऑप्शन डी अजीव आश्रव बंध पुण्य पाप तत्व।
जीव
अजीव
तत्व की
आश्रव
तो
पुण्य
नहीं
पाप
दुख होता, लेकिन उसको माना अपना वो दुख है ना। तो आपने अभी अजीव बोला।
हाँ, बी ऑप्शन में अजीव है तो डी ऑप्शन रूल आउट हो गया, वो नहीं हो सकता।
लेकिन इन द डी नाउ यू सेड द अजीव तत्व, बिफोर यू डिड नॉट से दैट। सो
अच्छा,
हाँ,
ओके
वो
ओके
टाइम पे आपने जब बताया था भैया तो सिर्फ चार थे, आश्रव बंध
अच्छा
एंड पुण्य पाप।
ओके। तो अभी वो बी ऑप्शन बन गया है, आश्रव
अभी
बंध
बी बन
पुण्य
गया।
पाप।
हाँ, तो ए
हाँ
ऑप्शन
तो
है आश्रव, बी ऑप्शन ऑप्शन आपने बताया आश्रव बंध पुण्य पाप, बी
हाँ
आश्रव पुण्य पाप, डी अजीव आश्रव पुण्य पाप बंध।
बराबर राइट। तो कौन
यहाँ
सा
तो लिखा है कि
ऑप्शन
आश्रव, यहाँ दौलत राम जी तो बोलते हैं कि आश्रव ही
हाँ
आश्रव अगर नहीं होएगा तो फिर बंद भी
हाँ
नहीं होएगा
ओके ठीक है। नहीं बट ठीक है, आश्रव नहीं होगा तो बंद नहीं हो सकता, मतलब है कि बंद रहे तो दुख का कारण है कि नहीं है, क्वेश्चन
ना।
ये
है,
है
दुख है, है,
है
ओके बस
है है
पुण्य पाप के बारे में क्या विचार है हमारा?
वो भी है,
वो भी पाप, वो भी
पुण्य पाप में आ जाते हैं ना, अंदर गर्भित है ना।
ओके
हमारे ऑप्शन आप ही तो आपको पड़े ना।
ओके ओके तो ऑप्शन ए रखेंगे कि बी रखेंगे? सी और डी तो रूल आउट हो गए, ठीक है चलिए। ऑप्शन ए आश्रम परिवार और बी है आश्रम
तो होता है ना।
हाँ
अजीब से भी तो दुख तो होता है ना।
अजीब से दुख कहाँ होता है, वो हमें दुख तो नहीं देता।
अपने अपने को माना ही अजीब सबसे, ये सब गाड़ी चल रही है तो हाँ। आपने जब इनमें अजीब भी बोले तो मतलब ऑल आर इंक्लूसिव और डिपेंडेंसी
अजीब दुख के कारण नहीं है। आई विल से
ओके तो अभी डी ऑप्शन भी रूल आउट नहीं हुआ है। ओके
तीन तीन जन के तीन ओपिनियन,
हालांकि का वोट, एक वोट ले लेते हैं। हाँ ए ऑप्शन के साथ कोई है आश्रव तत्व, दुख का कारण सिर्फ आश्रव है, इसके साथ कोई है? ओके ओके बी आश्रव बंध सम पुण्य और पाप, इसके साथ कितने लोग हैं?
आई एम सेइंग दैट इंडिविजुअली कोई नहीं है दुख, लेकिन ऑल आर इंक्लूसिव टू गिव मी द पेन।
So you are in D, D option हो गया फिर।
मतलब पहले आपने अजीब नहीं बोला था, लेकिन अभी अजीब
मैंने अजीब ऐड किया, ऐड किया मैंने उसमें।
लेकिन definitely आश्रव बंध और पुण्य पाप, they are all like you know inclusive, एक है तो दूसरा आता ही है जैसे।
हाँ inclusive है। Question is के कारण है कि नहीं inclusive तो है, there are no two doubts about it।
तो आप सिर्फ आश्रव को भी सिलेक्ट करते हैं ए वाला, तो गर्भित उसमें आंसर है कि नहीं? नहीं है।
मैं पूछ रहा हूँ आपके शब्द अभी इसका क्वेश्चन मेरा सिर्फ एक, मैं दुख का कारण जानना चाह रहा हूँ कि हम जो दुखी होते हैं वो दुखी किससे होते हैं? सात तत्वों में से या नौ पदार्थों में से ऐसे कितने पदार्थ हैं जो हमें दुखी करते हैं? राइट, तो फर्स्ट वॉज के आश्रव पदार्थ ही हमको सिर्फ दुखी करता है। सेकंड ऑप्शन वॉज के आश्रव बंध और पुण्य और पाप, इन चारों की जो टीम है ये टीम मिलकर हमको दुखी करती है। तीसरा ऑप्शन था कि नहीं सिर्फ आश्रव पुण्य और पाप, इन तीन लोगों की टीम मिलकर हमको दुखी करती है। एंड फोर्थ वॉज कि अजीब आश्रव बंध एंड पुण्य पाप, ये पांच लोग मिलकर हमारे आसपास की दुनिया बनाकर हमको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, दुखी करते हैं।
I'll go with the D, last one.
D, okay, D, एक ऑप्शन के लिए we have one vote for D, okay, ठीक है, D के लिए और कितने लोग हैं? देखिए क्या हमने आश्रव किया उससे कर्म आए तो बंद हुआ, कर्म के कारण पुण्य और पाप के फल आए और उसके कारण ही पूरा संसार बना, ये अजीब बन गया। तो अजीब भी है, आश्रव भी है, बंध भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, ये डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन हु ऑल आर सेइंग डी,
मतलब अजीब दुख नहीं देता, लेकिन अजीब से मुझे दुख हुआ वो मेरी जो मान्यता है वो।
नो नो नो, माय क्वेश्चन इज सिंपल, आपको दुख कौन देता है, दुख का कारण कौन है? खत्म, द क्वेश्चन इज ओनली
अश्रव।
उषा बेन, सचिन भाई, तमे लोको ही बोलो।
वो लोग सुखी है इसके लिए उनको दुख का भाषा नहीं मानो।
दुख का कारण कौन बनेगा? आश्रव बंध पुण्य पाप अजीब, इन सब में कौन है? तो लेट्स ट्राई टू डिस्कस अबाउट इट, थोड़ा हम इस पर विचार करते हैं, ठीक, हमें अलग 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 तरीकों के आंसर मिले। लेट्स सी, ठीक है, हम अजीब से शुरू करते हैं। अजीब मतलब कौन? कि मुझे छोड़कर बाकी के सारे द्रव्य, बाकी के सारे द्रव्य मेरी रियलिटी तो ये है।
सारे द्रव्य में नहीं आएंगे,
हाँ, मुझे छोड़कर जितने भी निमित्त बनते हैं मेरे लिए, वो सब मेरे लिए, मेरे परिवार वाले अजीब है, मेरे लिए कार अजीब है, गाड़ी अजीब है, घर अजीब है, सब कुछ अजीब है, ठीक है,
ले लेंगे उसको भी, क्योंकि समटाइम्स धर्म अधर्म को भी हम उसी तरह सोच लेते हैं।
बराबर बराबर, करेक्ट। तो सबसे पहली बात अजीब तत्व, तो अजीब तत्व में क्या हुआ, हमसे बाहर की चीज आई। अब सीधी सी बात है, जो चीज मुझको छू नहीं सकती, जिसके और मेरे बीच में अत्यंत अभाव है, वो मुझे दुख नहीं दे सकती। जैसे 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 कि यहाँ पर लाइक आपने वो पुरानी हॉरर मूवीज देखी होंगी इंडिया में, पहले आपके बचपन में बनते होगी, जब आप लोग देखते होंगे मूवीज किसी जमाने में, तो वो पहले जो भूत होता था, वो भूत जब कोई मर जाता था और उसकी आत्मा आती थी, तो वो छू नहीं पाता था किसी को, वो बहुत चाहता था कि मैं छू लूं, बट यू नो उसकी वो हाथ करता था और उसकी बॉडी पास थ्रू हो जाती थी। राइट राइट, ऐसे यू कैन नॉट जस्ट टच इट। सो नाउ जब वो छू ही नहीं सकता है, तो वो परेशान क्या करेगा, वो मारेगा कैसे, ही कैन नॉट टच यू। राइट, द क्वेश्चन इज, जो कुछ अच्छे वाले भूत होते थे वो नहीं छू पाते थे, बुरे वाले कर लेते थे जो करना होता था। बट आई एम जस्ट सेइंग, इट्स जस्ट सोचने वाली बात है कि जो चीज टच नहीं करती वो कुछ नहीं कर सकती आपका। राइट ठीक है, पक्का? तो अजीब तत्व इज लाइक दैट, अजीब तत्व के बीच में और आप में अत्यंत अभाव है, तो वो दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दुखी करने के लिए उसको आपको छूना तो पड़ेगा एटलीस्ट। It cannot even touch you.
बराबर,
अत्यंत अभाव है, तो मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि वहां पर अजीब तत्व मुझे कुछ दे पाएगा। सी, आप मेरे घर पर आकर रहोगे और मेरा घर एक दिन छीन लोगे, मुझे बहुत डर लगता है, रोज रात को मैं सो नहीं पाता। बट भला आदमी मैं भी अपने आप को समझाऊं कि यू आर लिविंग इन US और मेरा घर यहाँ पर है इंडिया में, हाउ कैन यू US में रहकर मेरे घर के ऊपर कब्जा कर सकते हो? आप यहाँ पर होते, आपके साथ 15-20 बॉडी गार्ड घूम रहे होते, गुंडों को लेकर आप आते, तो मैं डरता तो चलता, बट यू कैन नॉट लुकिंग, वहां पर US में आप रहते हो, मुझे आपसे क्या डर है अभी? तो ऐसे हमारे बीच में और अजीब तत्व के बीच में बहुत बड़ी दीवार है, अत्यंत अभाव की बहुत दूरी है, बहुत बड़ी टेंशन है, वो एक दूसरे को नहीं छू सकते।
तो मगर हम समझते तो नहीं,
क्या चीज
हम समझते तो नहीं है ना, हम तो देह को ही अजीब को,
हाँ तो हम
तो वो
मैं सिंपल सा एग्जांपल है, मैं जाऊंगा और एक पेड़ के पास जाऊंगा और पेड़ पर जाकर अच्छी चीज उसके सामने हॉर्न मारूंगा, हॉर्न, क्योंकि वो रास्ते में है पेड़, आई एम जस्ट हॉर्निंग, ओके, हॉन्किंग हॉन्किंग हॉन्किंग, भाई साइड हो जा साइड हो जा साइड हो जा, कितनी देर बाद पेड़ साइड हो जाएगा?
नहीं होएगा,
नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया कि अरे साइड ही नहीं हो रहा, इतनी देर से मैंने एक्सीलेटर दबा दिया और अच्छी तेज, आई जस्ट, अच्छी बात है, ही इज नॉट, ही वॉन्ट्स टू बी हिट, अलग कर दिया। अब कितना दर्द हुआ पेड़ को, क्या परेशानी हुई?
कुछ नहीं,
नथिंग, पेड़ खड़ा है अभी भी, लुक एट योर कार, लुक एट योर सेल्फ, आपके एयर बैग्स निकल के आ गए बाहर,
दुखी आप हुए।
सो अजीब, वो पेड़ आपको दुखी नहीं कर रहा है, डोंट ब्लेम द पेड़ दैट यू नो उसने एक्सीडेंट कर दिया, नो, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए था कि पेड़ सुनता ही नहीं आपके हॉर्न को, इट कैन नॉट लिसन टू दैट।
वही कह रहे हैं कि हम
तो आप अजीब तत्व को ब्लेम नहीं कर सकते दुख के कारण के लिए, आप पेड़ को, पेड़ को नहीं जाएगा वो कोर्ट में नहीं जाएगा कि इसने एक्सीडेंट कर दिया, यू कैन नॉट प्रोसिक्यूट द पेड़, द ट्री कैन नेवर बी प्रोसिक्यूटेड, नॉदर डज द माउंटेन और द रिवर और द ब्रिज एनीथिंग, रोड पर कभी केस नहीं होता है कि रोड ने इसका एक्सीडेंट कर दिया, नो।
तो इसके
अनुभव जी,
तो आपका जवाब ओनली आश्रव ही आएगा?
नो 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 नो,
नहीं 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 अनुभव जी, तो उसके मतलब इसी मतलब इस अपेक्षा से तो मतलब आश्रव है, बंद है या अजीव है, पुण्य पाप, ये मतलब ये कोई भी दुख के कारण हो ही नहीं सकते ना फिर,
क्यों? क्योंकि हम सिक्वेंशली चल रहे हैं, आश्रम ही है, पहले हमने अजीब को उठाया और अजीब को पकड़ा तो पता पड़ा कि अजीब तो हमारी टेरिटरी में ही नहीं है, करेक्ट? तो वहां से कोई मतलब ही नहीं था उससे बात करने का दोस्ती, ठीक है, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग इट रूल्ड आउट. अब बचे आश्रम, बंद, पुण्य एंड पाप, करेक्ट, चार चीजें बची. अजीव तत्व दुख का कारण है, ऐसा किसी को डाउट है?
नहीं, उसमें तो क्लैरिटी है.
हाँ, क्योंकि यदि ये डाउट है तो इसी को जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कहते हैं. अजीव हाँ. मेरा कुछ
बराबर है, जब रियल लाइफ में चले जाते तो अजीब को ही दुख का कारण मानते हैं. जैसे एक्सीडेंट हुआ तो हम तो वही बोलेंगे व्यवहार में कि वो ट्री आ गया, मैं क्या
करूं. पेड़ रख दिया उन लोगों ने, यहाँ पर रखने की कोई जरूरत है पेड़ को? राइट, करेक्ट, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. वो आपको फिर गुस्सा दिलाएगा. यू कैन नेवर गेट द कंपोजर बैक यदि आप सामने वाले को ही ब्लेम करते रहेंगे तो. राइट, सो द फर्स्ट थिंग इज रूल्ड आउट कि अजीव तो बाहर की टेरिटरी पर है, वो मेरे देश में ही नहीं है, तो हाउ कैन आई ब्लेम इट. लाइक मेरे रात को घर में चोरी हुई एंड मैं ब्लेम उसको कर रहा हूँ जो बाहर दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है. हाउ वॉज इट पॉसिबल फॉर हिम? ठीक है, तो ये हो गया, ये वाली बात खत्म हो गई. नेक्स्ट इज नाउ, अब हम चलते हैं बंध पर और पुण्य पर, पाप पर और आश्रव पर. तो हम एक एक करके जाते हैं. व्हाट इज आश्रव? आश्रव क्या है?
दुखदायक.
दुखदायक है मतलब आश्रव कैसा दिखता है, दिखने में कैसा होता है आश्रव? गोरा, काला, लंबा, सीधा, कैसा होता है
आश्रव? आश्रव भाव होता है ना, पुण्य और पाप के भाव.
पुण्य और पाप तो अलग पदार्थ हो गए, वो तो अभी अलग कैटेगरी में रखेंगे. आश्रव कैसा दिखेगा? आश्रव दिखेगा क्रोध का परिणाम, भाव जैसा आपने बोला, परिणाम भाव, कषाय के, राग के, द्वेष के, मोह के परिणाम. ठीक है, ठीक है, तो इसमें तीन चीजें, मोह, राग और द्वेष. अब आप जो बात इतनी देर से कंफ्यूज हो रहे हैं वो मोह के कारण हो रहे हैं. हम जब भी परद्रव्य का कारण, परद्रव्य को दुख का कारण मानते हैं, उसमें राग और द्वेष हमारा कारण नहीं होता, मोह होता है. मोह मतलब परद्रव्य में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि. राइट, तो ये वाला भ्रम के परद्रव्य दुख का कारण है, ये मोह के कारण होता है. ओके, ठीक है,
बराबर है.
तो ये सीधा सीधा मिथ्यात्व, तो उल्टी मान्यता है, मतलब उल्टी मान्यता है मतलब इस सरासर झूठ है कि अजीब ने दुखी किया और आप दुख मान रहे हो, इसलिए हमको मिथ्यात्व है. नहीं मानते दुख तो वह सम्यक्त होता, पर द्रव्य को दुख का कारण नहीं मानते तो सम्यक्त होता, मानते हैं तो मिथ्यात्व. तो हम मोह नाम के आश्रव की बात को एक साइड रखते हैं क्योंकि हमने अजीब तत्व की बात कर ली. यदि हम अजीव तत्व की बात समझ गए तो हमको मोह होना बंद हो जाएगा, हम सब में दृष्टि हो जाएंगे. इट्स दैट सिंपल. आप अजीव परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानना छोड़ दो, मोह का नाश हो गया. मोह संबंधी आश्रव इज गॉन आउट, वो बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया, खत्म. ठीक है, तो हम मोह संबंधी आश्रव को यहां नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अजीव तत्व से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये नास्ती से. और अस्ति से मेरा सब कुछ मेरे पास ही है, मैं बना बनाया भगवान हूँ. जैसे गुरुजी श्री बोलते थे पूरण, एक प्रभु तू पूरण है, पूरा शांति का, आनंद का घन पिंड, तेरे में कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, बराबर. तो अस्ति से कि मेरा सब कुछ मुझ में, और नास्ती से कि मेरा परद्रव्य से कुछ भी नहीं, तो इतने में मोह की सेना खत्म हो जाती है बहुत ज्यादा. ठीक है, ये सम्यक दर्शन, चौथा गुणस्तर लेवल अप हो गए हम. ठीक है, अभी हम आश्रव और बंध की बात करेंगे, आश्रव की बात करेंगे जिसमें राग और द्वेष संबंधी आश्रव. राग द्वेष इसकी कैटेगरीज बनेंगी, क्रोध मान माया लोक, तीव्र कषाय, मंद कषाय, शक्लेश, कृष्णी, कापोर, तीर, पद्म, शुक्ल, चौदह अलग अलग इसमें वेरिएशन बनेंगे, बराबर. कृत कार्य तनुमोदना, समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन से, वचन से, काया से, ये सारी चीजें, इसमें सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, करेक्ट. अब देखते हैं, हम मैंने आश्रव किया, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा, आश्रव होगा, करेक्ट. तो मैंने आश्रव किया, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अभी क्रोध किया तुम्हें कितने समय के बाद दुखी होऊंगा, इसका फल कितने टाइम बाद मिलेगा मुझे?
इमीडिएटली
नहीं, नहीं, मैंने क्रोध अभी किया है, फिर कर्म आएंगे, फिर आबादा काल बीतेगा और फिर मैं दुखी होऊंगा ना बाद में?
नहीं, अभी क्रोध किया तो आकुलता हुई, वैसे भी तुरंत ही तो वो आकुलता का फल तो मिलता है ना, कि आकुलता हुई।
वंडरफुल, ये इतनी सी बात समझने में हम लोगों के साथ तत्व संबंधी भूल खड़ी हो जाती है, हम इतना सा नहीं समझ पाते। हमको ये लगता है कि मैंने अभी क्रोध किया मतलब मुझे कल इसका फल मिलेगा बुरा, मैंने बहुत पाप कर लिए पता नहीं अगले भाव में मेरा क्या होगा। हमको लगता नहीं है कि जो रागादि प्रगट जे दुख बहन, जो वर्तमान में ही दुख का कारण है, जिसको भविष्य में पुण्य पाप के उदय की अपेक्षा नहीं है, जिसने अभी ही दुख दे दिया है, उसको हम दुख का कारण नहीं मानते। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमने बुरा किया है तो अभी तो कोई नहीं, हम तो लकी थे, किसी ने देखा नहीं, लेकिन कर्म बन गया, अगले भाव में हमको पता पड़ेगा। ऐसे ही चलता है राइट? वर्तमान का अपराध हमको अपराध नहीं लगता, बस हमें गिल्ट हो जाती है, कैसे पाप बंधे होंगे मुझे तो पता नहीं। सो वी आर डूइंग समथिंग जो कि हमको पता ही नहीं करना चाहिए और हम उसको बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, बस हमको एक गिल्ट है। क्या गिल्ट है कि यार कर्म बहुत बुरे बन रहे हैं, वर्तमान में हमारे परिणामों से हम दुखी हो रहे हैं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, वी डोंट केयर। हेलो,
हाँ हाँ जी,
बराबर। अब लेकिन चलिए अब थोड़ी देर के लिए वर्तमान में क्या हो रहा है उसको भूल जाते हैं। तो मैंने अभी राग द्वेष किया, मैंने एक बहुत ही घमंड का परिणाम किया कि अरे देखो मैं तो जैन कुल में पैदा हो गया हूँ और मुझे तो गुरुदेव भी मिल गए हैं और एकदम बढ़िया सब समझ में आता है, मुझे समय सारणी में मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ और मैंने गुरुदेव जी के पूरे प्रवचन भी सुन लिए। सो ये मान का परिणाम है, ठीक है, ये मान का परिणाम आया, ठीक है। तो इस मान के परिणाम के साथ कुछ कर्मों का भी आश्रय होगा, तो मान का परिणाम ये भाव आश्रय, कर्मों का आना ये द्रव्य आश्रय, ठीक है, बराबर। मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जीव और अजीव तत्व इन दोनों की अलग अलग पर्याय चलेंगी और इन दोनों की पर्याय 5 तरह की होती है, जीव की भी 5, आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, भाव आश्रय भाव बंध भाव संवर भाव निर्जरा भाव मोक्ष, और अजीव तत्व की भी द्रव्य आश्रय द्रव्य बन द्रव्य संवर द्रव्य निर्जरा द्रव्य मोक्ष, ठीक है। तो अपना अजीव तत्व से तो कोई वास्ता नहीं, उससे तो कुछ हम पहले ही छोड़ा है, उसको हमने मोह का भी अभाव कर दिया, लेकिन मुझे स्वाध्याय से इतना प्रेम हो गया कि अब मुझे धीरे धीरे उस पर घमंड भी होने लगा, ठीक है। आई काइंड ऑफ हैव अ सेल्फ सफिशियंसी और सेल्फ सुपीरियोरिटी बिकॉज ऑफ स्वाध्याय, दुनिया के सब लोग बेचारे क्या कर रहे हैं, कहाँ लगे हुए हैं, तो कुछ खबर ही नहीं है और मुझे सब कुछ पता पड़ गया है, मैंने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। दैट वे हम थोड़े अलग रोड पर चले गए, राइट। ये वाली रोड का सिम्टम सबसे पहला ये होता है कि हम दूसरों को समझाना चाहते हैं। जब आप कोई अच्छी बात पढ़ के आपको ये वाला तुरंत थॉट आएगा ये मैं उसको बताऊं, तो मतलब समझिएगा कि हम थोड़ी गलत रास्ते चले गए। गुरुदेव श्री बोलते थे समझने का मार्ग है, समझाने का नहीं है, राइट। और आजकल वो उल्टा रहा है, वी आर हैविंग समझाने के लिए सब बच्चों की पाठशाला लगाएंगे, हमारी भी वहां की पाठशाला चल रही है, इसका सेशन अलग चल रहा है, ये लोग यहाँ पर भी पढ़ने लगे, हम US में भी कुछ पढ़ते हैं, ब्रिटेन में भी ले जाएंगे, पूरी दुनिया तक ये वाली बात पहुंचे। वेन ये वाला हमें पहला पहला डाउट, ये प्रभावना का बाद में आना चाहिए, इट्स एन सीक्वेंस। मैंने एक अच्छी बात पढ़ी कि यार संसार अनित्य है और उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था कि ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छी गाथा आई वहां पर उसकी, और मैंने वो पढ़ा और तुरंत आई जस्ट शेयर इट, जैसे व्हाट्सएप पे कोई अच्छा मैसेज आता है तो फर्स्ट थिंग इज टू शेयर इट, राइट। इट्स नॉट ठीक है, व्हाट डिड आई
अनुभव जी, ये एक विद्वान ने मुझे बोला था कि गुरुदेव ने उसे क्या बोला के बोलते कि आपके घर में कोई आवे तो आप उसको पहले खाना परोसो और फिर आप खाओ, परंतु अध्यात्म में गुरुदेव ने उसको बोला कि अध्यात्म में हमने खुद पहले खाना और फिर परोसना,
बराबर बराबर ये ही है, द प्रोसेस ऐसी ही है। तीर्थंकर पहले केवल ज्ञान लेते हैं फिर उपदेश देते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, आदिनाथ मुनिराज, किसी को नहीं पता मुनिराज कैसे बनते हैं, उन्होंने किसी को नहीं बताया कैसे बनते हैं। देव को आकाशवाणी करनी पड़ी कि भैया आप लोग ऐसे मुनि मार्ग की निंदा नहीं करो। अब आप ही बताइए, जितने लोगों ने मुनिराज आदिनाथ के साथ दीक्षा ली उनकी क्या गलती थी? उनको पता ही नहीं था कि कैसे दीक्षा में क्या होता है, किसी ने बताया ही नहीं उनको कभी। उन्होंने तो देखा कि हमारे स्वामी, हमारे राजा वो नग्न हो रहे हैं, सब कुछ छोड़कर जंगल में जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। अब ये तो खड़े हो गए 6 महीने के लिए, इन्होंने तो उपवास ले लिया। अब सबकी थोड़ी इतनी ताकत है, तो सब लोग को भूख लगने लगी, तो सब पेड़ से तोड़ के फल खाने लगे, सब इधर उधर घूमने लगे। तो इंद्र को आकाशवाणी करनी पड़ी कि भैया देखो आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग इसको छोड़ दो, लेकिन इस पद की गरिमा का त्याग नहीं करो। आप मुझे एक बात बताइए कि आदिनाथ मुनिराज के पास इतना वक्त नहीं था कि वे रुकते, वे सबकी एक मीटिंग करते आधा घंटे की, एक घंटे की, और उनको बता देते कि ये मुनि दशा है, इसका ये स्वरूप है, 28 मूल गुण ऐसे होते हैं, आहार ऐसे लिया जाता है, विहार ऐसे किया जाता है, रात में एक करवट से थोड़े से प्रेयर के लिए सोया जाता है, बता देते। आधा घंटा भी नहीं था उनके पास।
वो तो राग हो गया ना फिर।
आप क्या, तो रागी तो है जब तक, अभी कौन से वीतराग हुए जब तक केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, बारवा गुण स्थान नहीं आता है। अभी तो छठवें गुण स्थान में थे ना, पहले गए, फिर वो सातवें में खड़े हो गए, छठवें से सातवें में, और फिर छठवें सातवें में झूलते रहे 6 महीने तक, नहीं तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन सातवें में लगातार तो नहीं रहे, अंदर बाहर आते रहे।
तीर्थंकर तो मौन व्रत लेते हैं ना।
क्यों, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों लेते हैं? उनकी तो जिम्मेदारी बड़ी है, उनको तो पहले से ही बोलना चाहिए सबको कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो।
क्योंकि जब तक उनको पूरा पता नहीं है, किसी को बताना बताना नहीं मांगते।
तो तीर्थंकर जैसे 3 ज्ञान के धारी बचपन से और 4 ज्ञान के धारी मुनि व्रत लेते ही, ऐसे महाज्ञानी जीव तो बताने के लिए आतुर नहीं है। और हम जो मिथ्यात्व से भरे पड़े हैं, हमको दुनिया को सम्यक की बातें बतानी है, तो देयर इज समथिंग, कुछ कुछ तो फ्लॉ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, वी आर गोइंग समवेयर बहुत रॉन्ग, राइट? तो यदि फर्स्ट इंस्टिंक्ट है कि हमें दूसरे को बताना है, तो दैट्स अ रॉन्ग इंस्टिंक्ट। फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज, हैव यू थॉट अबाउट इट, जो आपने पढ़ा कि आपने उसके बारे में विचार किया किया और अच्छी लगी तो सहज ही साधर्मी को बताने का हमको भाव आता है, बहुत अच्छा, बराबर। बट इसमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मतलब ये जो श्रद्धा का विषय है, फेथ का विषय है, बिलीफ का विषय है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लोग इसमें मरने मारने में तैयार हो जाते हैं। हम जानते ही हैं एक फेथ इज सच अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज होती है, बराबर। तो इसलिए इसमें जो भी होता है पंडित टोटरमल जी की लैंग्वेज में, उसको परीक्षा प्रधानी, रैशनल माइंड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को आपके गुरुओं के वेश में ही कोई आकर यदि आगम विरुद्ध बात करे, तो आपका फेथ इतना ब्लाइंड नहीं हो कि उनको बोलकर वो आगम विरुद्ध बात को भी सच मान के लड़ने को तैयार हो जाए, जैसा हुआ कई बार हुआ, बराबर। ठीक है, तो हम तो अपना एग्जाम्पल समझते हैं कि ठीक है, आपको अभी मुझे ये घमंड हो गया, मान कषाय हो गई कि मैंने बहुत स्वाध्याय किया है, तो क्या हुआ फिर उस मान कषाय के होते ही क्या हुआ? ये मेरा मान ने करी से भावाश्रव हुआ, यही भावाश्रव है, ठीक है। तो इसके कारण उसी समय क्या हुआ? द्रव्याश्रव हुआ। क्या हुआ? द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव से क्या हुआ?
कर्म बंधे।
कर्म बंधे। अच्छा, जब कर्म बंधे तो आत्मा में भाव बंध पर्याय हुई कि नहीं हुई? बंध की पर्याय आत्मा में कैसे होती है? पहले आश्रव की पर्याय होती है, फिर बंध की पर्याय होती है, राइट? है ना,
तो
पहले आश्रव,
आश्रव से भाव हुआ, मतलब भाव हुआ तो बंध हुआ।
ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए थोड़ा टफ पड़ेगा, बट थोड़ा आप लोग एनालिटिकल माइंड लगाइएगा। अब जस्ट इमेजिन करिए, मैंने चार्ट बनाया हुआ है, एंड मैंने चार्ट के टॉप पर एक साइड जीव तत्व लिखा है, एक साइड अजीव तत्व लिखा है, ठीक है? ठीक है, इस साइड जीव लिखा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर अजीव लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, जीव के नीचे मैंने लिखा है आश्रव, भाव आश्रव, ये जीव तत्व की पर्याय है, ठीक है, भाव आश्रव। और यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने द्रव्य आश्रव, अजीव, बराबर। अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों अलग अलग द्रव्य की पर्याय है, ठीक है? अच्छा, तो इन दोनों के लेफ्ट मोस्ट में जहाँ भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव एक ही लाइन पे लिखे होंगे ना अपने आजू बाजू, राइट? हम इसके पहले साइन लिख देते हैं। अच्छा, पहले क्या हुआ होगा, भाव आश्रव हुआ होगा कि द्रव्य आश्रव हुआ होगा?
पहले पूर्व कर्म में
समय में ही दोनों होएंगे।
नहीं नहीं, वापिस वापिस वापिस, मैं क्वेश्चन
होगा तभी ही।
नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, पूर्व का भी सब भूल जाइए, हम टाइम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? पूर्व कर्म का उदय आया उसको भी हम भूल जाते हैं, हम अभी देखते हैं कि इस जीव ने कुछ आश्रव का परिणाम किया है और इसको कुछ कर्मों का आना भी हुआ है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले भावाश्रव होगा या पहले द्रव्याश्रव होगा?
भावाश्रव,
भावाश्रव। तो लेट्स से कि अभी लेट्स से 7 बज रहे हैं, तो 7:00 पर भावाश्रव हुआ और 7:00 मतलब अगले समय में, तो 0 समय पर भाव आश्रव हुआ तो फर्स्ट समय पर द्रव्याश्रव होगा, इज इट? ऐसा होगा क्या?
नहीं, मतलब भाव आश्रव होगा वही टाइम पे, मतलब द्रव्य का बंद हो जाएगा कि जो हमें, हाँ क्योंकि पहले तो भाव ही होता है ना, मैंने जुड़ान किया वो मेरा रॉन्ग है,
ठीक है? चलिए, दिस इज टेकन के पहले भाव होगा फिर द्रव्य होगा, बट मुझे बताइए कि टाइम में कितना बजा है? एक समय पर तो भाव आश्रव हुआ है, तो द्रव्य आश्रव दूसरे समय होगा या उसी समय होगा?
उसी समय।
देखिए, आप पहले समझिएगा, समय का मतलब ये होता है, देखिए एक मिनट में तो 60 सेकंड्स होते हैं, करेक्ट? तो पहले सेकंड में कुछ और हो सकता है, 60 सेकंड में कुछ हो सकता है, तो सेकंड की तो सॉरी मिनट में तो स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। फर्स्ट सेकंड पर स्टार्ट होता है मिनट एंड 60 सेकंड पर मिनट खत्म हो जाता है, बराबर। समय उसे कहते हैं जिसकी बिगिनिंग और एंड नहीं होता, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, यदि आप ये बोल रहे हो कि द्रव्याश्रव और भावाश्रव एक समय में हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले भावाश्रव हुआ फिर द्रव्याश्रव हुआ। या तो फिर आप ये बोलिए कि भावाश्रव पहले समय में हुआ, द्रव्याश्रव दूसरे समय में हुआ, क्योंकि समय में हम भेद नहीं कर सकते कि पहले क्या हुआ, क्योंकि उसमें 3 पॉइंट नहीं है कि स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड,
बराबर,
करेक्ट? तो अब आप बताइए, पहले भावाश्रव हुआ है कि द्रव्याश्रव हुआ, कि दोनों एक साथ हुए?
नहीं, पहले भावाश्रव हुआ।
तो एक पहले समय में भावाश्रव हुआ और दूसरे समय में कर्म आए, इज इट?
नहीं, दर्शन
में मिथ्या दर्शन उत्पाद में आता है और वही ध्रुवता चलती है एंड वो एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो वो भी समय बदल गया, ऐसी बात हो गई ना अभी तो?
हाँ, दो मिनट, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन पर हम आएंगे शॉर्टली, पहले तो मुझे द्रव्याश्रव भावाश्रव बताइए। ये बताइए मुझे, मैंने अभी मान किया है तो मान हुआ मुझे अभी, ठीक है, घमंड है, बहुत सही, बहुत ज्यादा मैंने पढ़ लिया है और मैं रोज 6-6 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, ठीक है? ये परिणाम हुआ पहले समय में, तो इस परिणाम के कारण जो घमंड मतलब मान कषाय वाले परमाणु आएंगे कर्म के, वो पहले उसी समय आ जाएंगे कि अगले समय आएंगे?
वो ही समय में।
यदि वो ही समय आएंगे तो देखिए दो बातें हमको समझनी होगी। पहली बात, पहली बात ये कि मैंने कर्म को नहीं किया क्योंकि उस समय तो मैं अपने आश्रव को करने में बिजी हूँ, उस समय तो मैं घमंड कर रहा हूँ, तो मैंने कर्म को तो किया ही नहीं। यदि अगले समय आता तो मैं यहाँ पर घमंड करता और अगले समय कर्म के पास जाके उसको लेके आ जाता, आई हैड टाइम बट आई डिडंट हैव टाइम, आई वाज बिजी डूइंग कषाय, ठीक है? तो तो कर्म को बुलाना ये जीव द्रव्य का काम नहीं, फर्स्ट थिंग, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज,
हाँ, उसी
किसी
समय होगा क्योंकि वो
उसी समय
परमात्मा
यदि हुआ है, उसी समय यदि हुआ है कर्म, तो कर्म अपनी योग्यता से हुआ है, मान
है।
दशा
हाँ
के कारण नहीं हुआ।
एग्जैक्टली उसी समय
यदि
होता है।
यदि अगले समय होता तो मैं पता था, अच्छा उसने मुझको करते हुए देख लिया इसलिए वो मुझे आ गया मेरे पीछे। बट आप इस भूल में मत रहिए कि कर्म आपके परिणाम के कारण आपके पास आया है, कर्म
उसकी योग्यता से होता है।
अपनी योग्यता के कारण आया है।
बराबर है।
सूक्ष्म में थोड़ा 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 विचार करके चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। पोजीशन ये बन रही है कि दो द्रव्यों की एक समय में दो अलग अलग पर्याय हो रही हैं, जीव द्रव्य की भावाश्रव, कर्म की द्रव्याश्रव। जीव द्रव्य ने पहले समय में मान का परिणाम किया और कर्म को कोई वार्निंग नहीं थी, उसको कुछ पता नहीं था कि अभी घमंड करने वाला है, और कर्म फिर भी उसी समय, व्हाट अ कोइंसिडेंस, उसी समय वो मान कषाय के कर्मों को ही लेकर आ गया।
बराबर।
दो बातें पता पड़ी कि वस्तु व्यवस्था कितनी सुंदर है, कि जीव द्रव्य अपना काम कर रहा है वो किसी कर्म के कारण नहीं कर रहा, और कर्म अपना काम कर रहा है वो किसी जीव के परिणाम के कारण नहीं कर रहा।
एक द्रव्य दूसरे का नहीं कर सकता।
यहाँ तो निमित्त में दिक्कत हो जाएगी, निमित्त भी कैसे बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग समझे थे कि आप किसी बच्चे को डांट रहे थे, ठीक है, रोड पर, और मैं जा रहा था तो मैंने आपको डांटते हुए देखा, तो आई केम टू यू और आई मैंने बोला आप मत डांटिए, करेक्ट,
बराबर
ठीक है। लेकिन ये वाली बात तो ये हो गई कि आप डांटना जिस टाइम शुरू कर रहे थे उसी टाइम मैं आकर आपसे, आपने डांटा नहीं है, एट द सेम टाइम आप डांट भी रहे हो और मैं आपको शांत होने को ही बोल रहा हूं, इट्स अ कोइंसिडेंस। आप बोल, अरे तुमको कैसे पता कि मैं डांटने वाला था, गेटिंग। तो कर्म के साथ भी तो यही बात होगी, मैं मान कर रहा था और वो अपना ब्रीफ केस लेके आ गया कि देखो मेरे पास चारित्र मोहिनी में मान अनंतानुबंधी मान की कषाय के परमाणु है, इजंट इट अ वंडर। अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं यही परिणाम करने वाला था, कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि क्रमबद्ध में सबको सब पता है। तुम्हारा यदि क्रमबद्ध में मान का परिणाम नियत था तो कषायों के क्रम में अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी के मान का बंध भी नियत था। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है, ये सब एकदम एक से पैनल पर अपने अपने टाइम पर आ रहे हैं। ओहो, आई थिंक थोड़ा टफ पड़ रहा है, बहुत टफ पड़ रहा है।
नहीं, है, लेकिन बोलने में तो भैया ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि
अभी हम बोलने की बात नहीं होती, बोलना बहुत बड़ा व्यवहार है, बोलने में जितना झूठ होता है उतना किसी चीज में नहीं होता, आप समझिएगा, देखिएगा। आई टेल यू, आई टेल यू, बिल्ली को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैट कैट कहते हैं, वंडरफुल, ठीक है ठीक है। मेरे सामने एक कैट है, ठीक है, कैट जीती जागती है, बराबर, जिंदा है वो, दिख रही है आपको,
हाँ।
ओके। और मैंने यहां पर लिख रखा है बोर्ड पर CAT, कैट, और मैं मुंह से साउंड निकाल रहा हूं कैट। अब देखिएगा, जो मुंह से साउंड निकला है कैट, दैट इज डिफरेंट, जो बोर्ड पर CAT कैट के अल्फाबेट्स, वो जो जिगजैग लाइन करके मैंने अल्फाबेट्स बना दिए हैं, दैट इज डिफरेंट, और वो बिल्ली, दैट इज डिफरेंट। साउंड का और बिल्ली का क्या कनेक्शन है बताइए,
कुछ भी नहीं।
और जो साउंड का और सी का क्या कनेक्शन है, CAT, मैं सी को किसी और तरीके से बनाऊं तो
कुछ भी नहीं वैसे।
ओवर द टाइम हमने मैजिकली साउंड में शेप्स को एड्रेस किया और शेप्स में ऑब्जेक्ट्स को एड्रेस किया, और मैं कैट बोलता हूं तो आपको बिल्ली भी दिखती है, बोर्ड में CAT लिखा हुआ कैट भी दिखता है। तो अब बताओ इन तीन कैट में से कौन सी कैट सही है,
तो जो सामने वो फिजिकली है।
लेकिन शब्दों में तो वो कभी आ ही नहीं सकती, तो शब्दों से तो जो बोला जाता है वो तो कुछ है ही नहीं, राइट, दैट्स व्हाई क्या बोलने में आता है और क्या बोला जाता है हम उसको एक साइड रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। पहले हम वस्तु को समझ रहे हैं, ठीक है, शब्द अपने लिए एक टूल थे वस्तु को समझने के, और हमने शब्दों को ही सब कुछ बना लिया, और इसके कारण मूल वस्तु रह गई। राइट, ठीक है, चलिए वापस वापस वापस। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जैसे कि इसका एग्जांपल हम
पर थे कि भाव करते
हम एक एग्जांपल लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्या हुआ, जैसे कि आदिनाथ सॉरी बाहुबली मुनिराज है, ओके, बाहुबली मुनिराज क्या कर रहे हैं, बाहुबली मुनिराज तप कर रहे हैं, एक साल हो गया उनको तप करते करते, बराबर, एकदम सौम्यता साम्यता की मूर्ति है, तप की मूर्ति है, भरे पड़े तब के आगार है उनके शरीर में, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए हैं, सांप ने बिल बना लिए हैं, चींटियों ने छेद कर दिया है, और वो एक एक मतलब उनसे बड़ा तपस्वी कोई दिख ही नहीं रहा है पूरे जगती तल पर, कोई कहीं पर भी नहीं है, राइट। बट सडनली जब जब उनके ये सारे परिणाम चलते हैं उत्कृष्ट, वो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज हैं, बराबर, लेकिन बीच बीच में एक एक करके उनको मान का परिणाम जरूर आता है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा होकर तप कर रहा हूँ, और मैं भरत चक्रवर्ती की भूमि पर तप कर रहा हूँ, कितनी शर्म की बात है, मतलब मैं क्या करूँ, वो एक अंदर ग्रज रह गया था ना थोड़ा सा, राइट, मैं भरत की भूमि पर तप कर रहा हूँ। अब आप सोचिएगा, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, कभी कभी उनको आत्मा के शुद्धोपयोग का रस आता होगा, कभी 28 मूल गुणों के विचार, छह द्रव्य का विचार, जगत की अनित्यता का नित्यता का एक तब का विचार आता होगा। तो देखिए अब आप कैसे समझेंगे, T1 में पहले समय में उन्होंने जगत की अनित्यता का विचार किया, यहाँ पर ये भाव आश्रव की पर्याय हुई, तो द्रव्य आश्रव में उसी समय क्या आया, बहुत अच्छे प्रशस्त कर्मों का पूरा जमावड़ा आया, वो उनको स्वर्ग ले जाएगा बहुत बड़ा, बराबर, वापस उनके पास बहुत अच्छा विकल्प आया, जिनेन्द्र देव का, अरण भगवान का, आदिनाथ भगवान समव शरण में विराजते हैं, उनका विकल्प आया, तो तुरंत उसी समय द्रव्याश्रय में उसी के साथ क्या आया, बहुत अच्छा एक और प्रशस्त कर्मों का पूरा एक बिल आया, पूरा का पूरा एक क्या बोलते समूह आया, ठीक है। बट सडनली अब देखिएगा, इनको तुरंत याद आया कि भरत चक्रवर्ती की भूमि पर मैं खड़ा हूं। देखिएगा अभी यहाँ पर कैसे कर्म आते जा रहे थे लगातार पिछले बहुत सारे टाइम से अच्छे 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 कर्म आ रहे थे, क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं था, शुद्धोपयोग होता तो कोई कर्म नहीं आते, बराबर, लेकिन उनको चल रहा था अभी थोड़े टाइम से, और फिर अचानक से क्या याद आया कि यार मैं भरत की भूमि में खड़ा हूँ, और अचानक से यहाँ इतने सारे जो अच्छे अच्छे कर्म आ रहे थे उसी टाइम कन्वेयर बेल्ट पर बुरे वाले कर्म आ गए। Now look it as a conveyor belt. अच्छा 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 फिर बुरा, फिर अच्छा 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 बुरा, ये सब एकदम टाइम से यहाँ पर फिक्स चल रहा है, और ये इन परिणामों से इतना सिंक है कि अच्छे 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 बुरे, तो जैसे बुरे परिणाम आते हैं सामने कन्वेयर बेल्ट पर, ये बुरा कर्म रहता ही है, लेकिन बुरे कर्म और बुरे परिणाम का और अच्छे कर्म अच्छे परिणाम का कोई रिश्ता नहीं, अत्यंत अभाव है दोनों के बीच में। इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वो कन्वेयर बेल्ट दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और वो एक क्रमबद्धता है, और इसको बहन श्री के शब्दों में बोलेंगे कि यदि कन्वेयर बेल्ट यदि एक शुभ परिणाम हो और उसका शुभ फल ना मिले, अशुभ मिले, या शुद्ध परिणाम हो और उसका शुद्ध फल ना मिले, तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। क्यों? कि कन्वेयर बेल्ट की सिंक्रोनाइजेशन हैज टू बी सो क्लोजली माइन्यूटली एक दूसरे के फंक्शन के साथ होना चाहिए, जिससे जो क्रमबद्ध है, जो बंधी हुई प्रकृति है, वो एक एज अ फुल्ली फंक्शनल बॉडी काम कर पाए। पूरी दुनिया एज अ बॉडी काम कर रही है, बुरा हो रहा है, बारिश हो रही है तो एक साइकिल के तहत हो रही है, वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं तो उनका कुछ कारण है, क्लाइमेट चेंज हुआ है तो देयर इज सम रीजन टू दैट, ये सब अपने अपने टाइम पर होने योग्य हो रहा है। बात आई समझ में?
हाँ।
तो दो बातें हो गई, जीव तत्व के नीचे भावाश्रम, अजीव तत्व के नीचे द्रव्याश्रम, और हमको ये पता पड़ा दोनों एक समय पर होते हैं, मतलब जीव इनमें से कोई एक काम करेगा, वो कौन सा है? वो भावाश्रम का। द्रव्याश्रम कौन करता है कि जीव नहीं करता, इतना पक्का पता है, ठीक है? आप नेक्स्ट जीव भावाश्रम के नीचे लिखिए भाव बंध। लिखा हमने भाव बंध, जस्ट इमेजिन करिए उसके नीचे क्या लिखा है, भाव बंध। और यहाँ द्रव्य आश्रम के नीचे लिखिए भाव द्रव्य बंध, ठीक है? अब मुझे बताइए, ये आश्रम तो हो गया भाव आश्रम, तो ये जो बंध होगा ये दूसरे समय में होगा या तीसरे समय में होगा? देखिए, इतना पक्का है कि पहले समय में आश्रम हुआ भाव आश्रम, और उसी समय भाव द्रव्य आश्रम हुआ, उसी समय कर्म आए, दोनों इंडिपेंडेंटली आए, एक दूसरे में कोई बातचीत नहीं हुई, बट दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, करेक्ट? ठीक है, नाउ टेल मी, ये जो भाव बंध और द्रव्य बंध है ये किस टाइम पर होगा? फर्स्ट समय पर होगा या सेकंड समय पर होगा या थर्ड समय पर होगा?
अनुपहुचे, अनुपहुचे, जो मुझे भाव आश्रम तो समझ में आता है, भाव बंध जीव का भाव बंध क्या होएगा वो मुझको,
वही वही मैं वही आपको अभी समझ में आ जाएगा कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो। द क्वेश्चन इज एकदम सिंपल है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले समय में जीव में भाव आश्रम की पर्याय हो गई, और उसी समय में इंडिपेंडेंटली क्रमबद्ध में नियत अपनी योग्यता से अपने षटकारक से कर्मों का द्रव्य आश्रम भी हो गया उसी क्षेत्र में, ठीक है?
हाँ।
अब ये बताइए, जो ये भाव बंद होगा ये कौन सी चिड़िया है? ये दूसरे समय में आएगी या तीसरे समय में आएगी, कब आएगी और इसका कैसे फंक्शन होगा?
वो ही समय है,
सेकेंड समय में होगा ना बंद, पहले में आश्रम हो गया और फिर बंद होगा,
नहीं वो ही समय में।
देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, मैंने हाथ में
ना, तो उसका भी समय अपना ही होगा, लेकिन होगा समय
अपना होगा, समय डेफिनेटली अपना होगा, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा समय होगा, पहला समय होगा या दूसरा समय होगा, आश्रम के बाद आएगा या आश्रम के साथ आएगा बंद?
साथ ही आएगा,
साथ ही,
पहले आएगा आश्रम बाद में होगा बंद, लेकिन होगा एक ही समय।
पहले पच्ची के तो डिफरेंस
एक समय में होगा तो पहले और बाद का व्यवहार नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक समय में इतने भेद नहीं बनते हैं, सीधी बात, यदि एक समय में होगा तो पहले और बाद भी होगा, साथ साथ होगा, और अगले समय होगा तो देन वी कैन डिस्कस, क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा मुझे ये बताइए सिंपल, ठीक है, आपने आग का अंगारा देखा है, ठीक है, आग का अंगारा होता है लाइक जलता हुआ आपका गोला, फायर बॉल, ठीक है, फायर बॉल है मेरे हाथ में, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फायर बॉल का मैं आश्रम कराऊंगा अपने हाथ में, आश्रम मतलब फायर बॉल का हाथ में आना, ठीक है? हाँ। तो मैंने फायर बॉल को हाथ में लिया, आश्रम हो गया, ठीक है, हाथ में आना मतलब आश्रम, आश्रम मतलब आना, तो मेरी फायर बॉल मेरे हाथ में आ गई, आ गई
उसी टाइम, आपको जला है अभी,
और जलेगा तो अगले समय जलेगी ना मेरा हाथ, तो अगले समय आने के दो सेकंड बाद जलना शुरू होगा,
नहीं उसी टाइम,
कितनी देर बाद जलना शुरू होगा?
नहीं,
लेकिन वो आया तो उसका कारण और जलना आपका मतलब वो भी दूसरा ही तत्व है ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे,
मैं हाँ, फायरबॉल का हाथ में आना और हाथ का जलना दोनों अलग अलग बात है, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप, एकदम ट्रू, फायरबॉल का हाथ में आना दैट्स इनटू, वो हाथ में आया लेकिन, और हाथ को जलना, ये दोनों अलग अलग काम हो रहे हैं, एग्जैक्टली राइट, एकदम करेक्ट, बट टेल मी, हाथ में आया और फिर कितनी देर बाद जलना शुरू हुआ, कि जैसे ही हाथ में आया तभी जल गया,
जैसे आया तभी ही चल गया,
उसी समय
तत्व में भेद है, आश्रम और बंध, आश्रम और बंध तत्व में भेद है, उसके टाइम में भेद नहीं है। जिस समय द्रव्य भाव आश्रव हो रहा है उसी समय भाव बंद है। जिस समय द्रव्य आश्रव है उसी समय द्रव्य बंध है। जिस समय फायरबॉल हाथ में आई है उसी समय हाथ जलेगा। 5 मिनट वेट करेगी वो फायरबॉल की, नहीं लेट मी सेटल डाउन और फिर मैं जलाना स्टार्ट करूंगी इसके हाथ को, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट, नहीं होगा ऐसे। जैसे टच किया वैसे जलेगा। सिमिलरली द्रव भाव आश्रव भाव बंध के बिना नहीं होगा।
बराबर,
कर्म आएंगे तो बंधेंगे, उसी समय बंधेंगे, ठीक है। सो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए। तो ये कर्म के भाव बंध को करने के लिए आपने कोई मेहनत करी क्या? आपने तो एक घमंड का परिणाम किया था। इफ वी गो बैक टू दैट स्टोरी वापस हमारी, मैंने तो एक मान कषाय का परिणाम किया। मान कषाय का परिणाम जो मैंने किया उस परिणाम के कारण मुझे द्रव्य में स्वतंत्र तरीके से वहां पर कर्म आ गए। जिस समय पर वो मान कषाय का परिणाम भावाश्रव हुआ उसी समय वो मान कषाय का परिणाम भाव बंध भी हुआ। बराबर, करेक्ट। और इसी समय जो कर्म आए थे आश्रम में वो उसी समय ठहर भी गए। उनका स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश चारों बंध उसी समय हो गए, पहले ही समय। तो एक समय में दो अलग अलग द्रव्यों में टोटल 4 काम हुए हैं। जीव तत्व में भाव आश्रय भाव बंध, और अजीव द्रव्य में द्रव्य आश्रय द्रव्य बंध। बात समझ में आई? बराबर, देखिए सुनिएगा, भाव बंध एग्जैक्टली कोई वस्तु नहीं है। आप देखिए, थोड़ा घबराइएगा नहीं। आश्रव होता है तो बंध होता ही है। आश्रव में ठहर जाने को बंध कहते हैं। पहले समय में आश्रव हुआ, दूसरे समय में भी आश्रव हुआ, फिर आश्रव की कंटिन्यूटी बनी ना, ये बंध है। इसको बंध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बाजू में हमारा पुद्गल है ना, जो अजीब तत्व साथ में चल रहा है बाजू में, इसमें जो आए थे वो रुक गए, रुक गए। उस रुकने के कारण इसी मान के परिणाम को भाव बंध कहते हैं। तो भाव बंध और भाव आश्रव पर्याय तरीके तो एक है, फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन ये है कि एक में बताना है कर्म आया और एक में बताना है कि कर्म ठहर गया।
परंतु भाव भाव में तो सेम ही
भाव में कि वही पर्याय को आश्रव कह रहे हैं, उसी पर्याय को बंद कह रहे हैं।
हाँ हाँ, तो ही मुझे नहीं समझ में पहले
तो अपना पहला क्वेश्चन, तो अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि दुख का कारण एसेंशियली कौन है, कि दुख का कारण आश्रव है, क्योंकि बंध तो कोई और चीज है ही नहीं आश्रव के अलावा। अब जो बंध हुआ है अजीव तत्व में, इस बंध के दो प्रकार बनेंगे, पुण्य और पाप। तो पुण्य कर्म का उदय आएगा तो पुण्य उदय, पाप का कर्म आएगा तो पाप उदय। तो ये तो सब अजीव तत्व की पर्याय है। तो वापस पहली कंडीशन आ गई, तो पुण्य और पाप और यहाँ तक के बंध ये दुख का कारण नहीं है। आश्रम
अनुभव जी, अभी I'm getting confused यहाँ, क्योंकि हम बस बोलते हैं कि जीव जीव का आश्रव, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, आश्रव तो समझ में आया। अभी पुण्य पाप में भी जीव के और अजीव में वो ऐसे डाल सकेंगे?
नहीं देखिए, पुण्य पाप और कुछ नहीं है, वो आश्रव के भेद है। देखिए, 4 चीजें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। बराबर, जब हम दुनिया को 4 नजरों से देखते हैं तो हमें 4 तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। जब आप द्रव्य से इस विश्व को देखते हो तो आपको पता पड़ता है कि इस विश्व में 6 द्रव्य हैं।
बराबर,
ठीक है। जब आप इस विश्व को क्षेत्र की नजर से देखते हो, कितने बड़े द्रव्य कितने छोटे, तो आपको पता पड़ता है कि इस विश्व में 5 अस्थिकाएं हैं और काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, वो अस्थिकाएं नहीं है। उसी विश्व को देख रहे हो आप, जहाँ छह द्रव्य देखे थे वहीं पर आपको पांच अस्थिकाएं और एक काल द्रव्य मिला जो कि एक प्रदेशी था, जिसको हम काय कह ही नहीं पाए, छोटा सा था, बहुत छोटा था, ठीक है। जब इसी विश्व को आप भाव तरीके देखते हो, भाव के लिए देखते हो, इस विश्व के सात तत्व भेद पड़ते हैं। अलग अलग भाव है ना, जीव उद्गल, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष। और जब इसी जीव तत्व को आप काल की अपेक्षा देखते हो तो सात तत्व बनते हैं। जीव अजीव ये दोनों अनादि अनंत है, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये एक एक समय के होते हैं, बट इसमें आश्रव अनादि शांत है, बंध अनादि शांत है, निर्जरा सादि शांत है, संवर सादि शांत है और मोक्ष सादि अनंत है। काल की अपेक्षा जब भेद बनते हैं तो हम इनको कहते हैं सात तत्व। और जब आप भाव देखते हो, आप ये देखते हो कि हर एक का फंक्शन अलग अलग है। तो जैसे कि पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ है, तो पुण्य पदार्थ का काम ये है कि वो आपको बाहर में अच्छी अच्छी सामग्री का उदय कराए, और पाप पदार्थ का अर्थ है कि वो बुरी बुरी सामग्री का उदय कराए। और आश्रव का मतलब है मोह राग द्वेष होना उस अच्छी बुरी सामग्री में, और बंध का मतलब है कि उस मोह राग द्वेष में ठहर जाना। तो इनके भावों में अंतर है, इसलिए हमने नौ भेद किए हुए हैं। लेकिन हम मोटा मोटा जब देखते हैं तो आश्रव के अंदर ही पुण्य पाप समाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई पांच अस्थिकाएं बोले और छह द्रव्य बोले और सात तत्व बोले और नौ पदार्थ बोले तो उनको अलग अलग चीज मत मानिएगा, ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखने के तरीके हैं, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज मत होइए पुण्य और पाप में। पुण्य पाप क्या है, इसको पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में पुण्य तत्व का और पाप पदार्थ का वर्णन किया है। उन्होंने बोला है जो शुभ भावों से बंधता है वो पुण्य पदार्थ है, मतलब अघाती कर्म जो कि बंध रहा है आपको, और जो अशुभ भावों से बंधता है वो पाप कर्म है। तो बंधने वाली चीज क्या होगी, जीव होगी कि अजीव होगी, अजीव तत्व। अजीब
हाँ
है तो पुण्य और पाप मुझे सुख दुख कैसे दे सकता है,
बराबर।
बराबर तो पुण्य पाप की बात करना फालतू हो गया, क्योंकि यदि मुझे आज अच्छा घर मिला है और अच्छे परिवार वाले मिले हैं ये पुण्य का उदय है,
बराबर है,
ये सुख दुख का कारण नहीं है। ये तो पर द्रव्य में, ये तो बाहर का मिला है ना मुझे। तो देखो
हाँ
जिसके पास अच्छा घर और अच्छी गाड़ी है वो खुश होता हो, ऐसा तो नहीं है। उसके जीवन में, उसकी लाइफ में भी स्ट्रेस है, उसके लाइफ में भी दुख है, तो ये सुख का कारण कैसे हो सकता है। हाँ यदि इस कार में या इस घर में या मेरे फैमिली मेंबर्स में मुझे सुख बुद्धि है, मैं आश्रव से भ्रम करता हूँ कि अरे मुझे रति है इनके प्रति, आई लव माई फैमिली, ये रति नाम का नो कषाय हो गई, तो ये नो कषाय आश्रव इसके कारण अब मैं आकुलित होऊंगा। देखिए एक छोटा सा बच्चा होता है मम्मी पापा का, जब आप लोगों के बच्चे छोटे छोटे होंगे आप लोग सोच सकते हैं, और बच्चा बिना कारण रोता है और आप पता नहीं कर पाते यार इसके कान में दर्द हो रहा है, इसको भूख लगी है कि क्या लगा है, ऐसा होता है ना, छोटे बच्चों का पता नहीं पड़ता वो रो रहा है एंड यू नॉट रियलाइज कि क्या हुआ है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं है, आपको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यू फील द पेन, यार क्यों रो रहा है ये, क्यों रो रहा है ये, क्या करें हम, यू गो क्लूलेस क्लूलेस। तो ये जो आपका दुख है, ये दुख इसमें कुछ है नहीं बाहर में, आपके बाजू में आपकी फ्रेंड बैठी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये वाला सब आश्रव तत्व के कारण दुख है। आप अपने रति परिणाम, राग अपने बच्चे के प्रति जो मोह परिणाम है उसके कारण कल्पना में दुखी हो रहे हैं, दुख की कोई बात नहीं है वहां। तो ये पंडित दौलत राम जी ने बोला है ये ही आत्म को दुख कारण, दुख का कारण सिर्फ आश्रव है। उस समय काकी गाथा भी है, अशुचि पना विपरीत का इन आश्रवों की जानकर अरु दुख कारण जानकर इनसे निवर्तन जीव करे। बंध को वहां नहीं बोला, बंध से कुछ नहीं है जीव को प्रॉब्लम, बंध अजीव तत्व हो गया। बंध का क्या होगा, कर्म बांध लिया, अब क्या कर सकते हो, चलो मैंने तो बांध लिया, फिर पिछले जन्म के कर्मों का फल आएगा, do you have any control over that? आपको उसके ऊपर कोई कंट्रोल है?
नहीं।
तो क्या फिर हम जिसके पूर्व कर्म बने हैं, क्या वो दुखी होने के लिए बाधित है कि नहीं? सुकुमाल मुनिराज को देखो, श्यालिनी उनको खा रही है, सुकौशल मुनिराज को खा रही है, पूर्व कर्म के उदय में ही खा रही है ना, तो वो दुखी है कि नहीं है? देखने में तो लग रहा है कि क्या होगा कि फिर यदि वो दुखी है तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान कैसे ले रहे हैं? राइट। तो पूर्व कर्म का बंध, उसका उदय, वो अजीव तत्व है, वो दुख का कारण नहीं है। वर्तमान में आने वाला द्रव्याश्रय वो अजीव तत्व है, उसकी चिंता मत करो कि मैंने कितने बुरे कर्म बांध लिए, कितने बुरे कर्म बांध लिए, बिल्कुल फॉरगेट अबाउट इट। बट वर्तमान में हो रहा राग द्वेष का परिणाम, ये वर्तमान का परिणाम, ये दुख का कारण है। हमें इसका रिग्रेट है कि मैंने कैसे कर्म बांध लिए, हमें इसका रिग्रेट नहीं है कि मैं वर्तमान में कैसे परिणाम कर रहा हूँ, ये मिथ्या है। ये आश्रय तत्व संबंधी भूल है। रागादि प्रगट, जो प्रगट में दुख दे रहा है वर्तमान का परिणाम, उसको तो उसको लग ही नहीं रहा, उसको तो बढ़िया अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, आज मेरे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, आई एम फीलिंग पॉजिटिव टुडे, आज का दिन अच्छा है, आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स टुडे, तो वो तो उसको सुख के कारण कर रहे हैं, उनसे उसको दुख नहीं लगता। और जो दुख के कारण नहीं है, ऐसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, मेरा दिमाग नहीं चलता, ये जो दुख के कारण नहीं है, इनमें इसको दुख लगता है। नाइस, ठीक है, हो गया इसमें? एनी क्वेश्चंस?
हाँ नहीं, फिर
हम लोग गुरुदेश जी का कल या परसों प्रवचन सुन रहे थे, तो उन्होंने तीन बातें बोली थी, जीव का परिणाम भिन्न है, कर्म का उदय भिन्न है, और कर्म के उदय में आने वाला फल भिन्न है। तो सिर दर्द हो रहा है, उसका असाता वेदनीय कर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि असाता वेदनीय कर्म जुदा द्रव्य है और सिर वो शरीर जुदा द्रव्य है, और असाता वेदनीय कर्म का जीव से लेने देने का कुछ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध, कोई संबंध नहीं। तीन अलग अलग चीजें हो रही हैं, और जीव की भ्रमणा का हाल ये है कि उसको लगता है कि मुझे सिर दुखा और मुझे सिर दुख इसने कराया, जबकि कुछ हुआ ही नहीं वहां तीनों का। तीनों अपने अपने कन्वेयर बेल्ट पर अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपने टाइम पर चल रहे थे, लेकिन विचार के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में वो जीव दुखी हुआ, वहां परेशान हुआ। ठीक है, आप लोग विचार करिएगा, हम इस पर और डिस्कशन करेंगे। ये एक्चुअली संवर और निर्जरा तत्व को समझने के लिए इम्पोर्टेंट था कि आश्रव दुख का कारण है तभी संवर दुख का कारण बनेगा, बंद दुख का कारण नहीं, इसलिए निर्जरा से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। निर्जरा तो इज वेरी इजी, कर्मों को भगाना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड हम समझ लें कि कर्मों के भगाने में करना क्या होता है, राइट? वो है संवर, वो संवर को हम समझेंगे और हमको पता पड़ेगा क्या है। ठीक है, एनी क्वेश्चन विचार करिएगा, हम लोग करते हैं। ठीक है, जिन वाणी करते हैं,
बहुत it's good thinking.
Yes. ठीक है,
आपने तीन बात बताई, एक दफा रिपीट कर दो ना गुरुजी।
कौन सी वाली बातें? अभी जो गुरुदेव श्री के प्रवचन से, हाँ, तीन बातें, जीव का वर्तमान नाम या जीव का कषाय परिणाम, उसके कर्म का उदय दूसरी बात, और तीसरा कर्म के उदय में जो बाहर में उसका फल दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मुझे असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, तो कर्म का उदय तो उसकी पर्याय है कर्म की, और उसमें मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द तो शरीर की पर्याय है, और जीव बोल रहा है कि अरे मेरा सिर दुखा, जीव की पर्याय है। इन तीनों में अत्यंत अभाव है, कर्म सिर दर्द नहीं कराता, सिर दर्द जीव को दुखी नहीं करता, और जीव कर्म नहीं करता, लेकिन इस नहीं समझ पाने के कारण ब्लेम गेम चल रहा है, जीव पुद्गल को ब्लेम करता है, पुद्गल जीव पर फायर बैक करता है, वो है।
थैंक यू।
ओके, चिन्मानी से करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए चिन्हवाणी माँ को बंद नाशक इसके लिए चिन्हवाणी माँ को बंद नाशक नो बाय
जिनेन्द्र थैंक यू नंबू जी।